Stone by Wilkie Collins. تحریر اور پیشکش سید عرفان علی. یہ سطور انڈیا میں بیٹھ کر میں اپنے برطانوی رشتہ داروں کے لیے لکھ رہا ہوں. اس کی ایک وجہ یہ بیان کرنا ہے کہ میرے تعلقات اپنے کزن جان ہرن کیسل سے کیوں خراب ہوئے. ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ غلطی میری تھی. میری اس تحریر کو پڑھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے کہ میں غلطی پر تھا یا میرا کزن. جب انگریز انڈیا پر قابض تھے تو 1799 میں انہوں نے سرنگا پٹم پر حملہ کیا. یہ جنوبی ہندوستان میں واقع تھا اور میسور کا دارالحکومت. وہاں کی بے شمار دولت اور خزانوں پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا. سرنگا پٹم پر حملہ کرنے سے پہلے ہی مون سٹون نامی ہیرے کے بارے میں انگریز سپاہی باتیں کرتے کہ اس عظیم ہیرے کو ضرور حاصل کرنا ہے. اس زرد رنگ کے ہیرے کی داستان بہت پرانی تھی. ہندو جن دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے ان میں سے ایک کا تعلق چاند سے تھا. چار ہاتھوں والے اس دیوتا کے ماتھے میں یہ بڑی جسامت کا ہیرا لگا ہوا تھا. 11th century میں محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا. سومناتھ کے مندر جس کا شمار عظیم خزانوں اور اثاثوں میں بھی ہوتا تھا اس پر بھی قبضہ کیا. مگر پجاری چاند دیوتا کا بت جس کے ماتھے میں مون سٹون لگا ہوا تھا وہاں سے رات کی تاریکی میں نکال کر دوسرے اہم شہر بنارس لے جانے میں کامیاب ہو گئے. یہاں جس مندر میں اسے رکھا گیا اس کے ستون سونے کے بنے ہوئے تھے اور وہاں اس کی عبادت کی جانے لگی. ایک رات خواب میں تین ہندو براہمنوں کو دیوتا نظر آئے جنہوں نے تاکید کی کہ ہمیشہ تین براہمن اس ہیرے کی حفاظت کریں گے نسل در نسل. دیوتا نے یہ بھی کہا کہ جو کوئی اس ہیرے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس پر اس کے خاندان پر آفات کا نزول ہوگا. براہمنوں نے یہ بات اس مندر کے باہر لکھوا دی. صدیاں گزرتی گئیں اور تین براہمن اس ہیرے کی حفاظت کرتے رہے. 18th century میں مغل بادشاہ اورنگزیب کے حکم پر وہاں سے وہ نایاب ہیرا اس کے پاس پہنچ گیا. تین محافظ براہمن اس قابل نہ تھے کہ تلواروں کے زور پر سپاہیوں کا مقابلہ کرتے تو بھیس بدل کر ہیرے کے قریب رہنے کی کوشش کرتے رہے. صدیاں گزرتی گئیں. جس کے پاس ہیرا جاتا وہ آفات میں گھر جاتا مگر براہمن وہ ہیرا حاصل نہ کر پاتے. یہاں تک کہ ٹیپو سلطان کا دور آ پہنچا. اس نے اس ہیرے کو خنجر پر لگوایا اور اپنے بہترین خزانے کا حصہ بنایا. مگر ٹیپو سلطان کے ساتھیوں میں تین براہمن ابھی بھی موجود تھے جو دراصل بھیس بدل کر ٹیپو سلطان کے دل میں جگہ بنا چکے تھے. مگر حقیقت میں ہیرے کو حاصل کرنے کی کوشش میں مگن ہیرے کے محافظ وہی براہمن تھے. وہ دن بھی آ گیا جب سرنگا پٹم پر انگریزوں نے حملہ کرنا تھا. میرا کزن اس ہیرے کو حاصل کرنے کا خواہش مند تھا اور ہم جو اس ہیرے کی کہانی پر یقین نہیں کر رہے تھے سے سخت ناراض تھا. اس نے کہہ دیا کہ اگر سرنگا پٹم پر ہمارا قبضہ ہو گیا تو ہیرا اس کی انگلی میں نظر آئے گا. جنگ شروع ہوئی تو مجھے اپنا کزن نظر نہ آیا. ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا. شہر اور محل پر قبضہ کر لیا گیا. ہمارے اپنے سپاہی بھی لوٹ مار میں مصروف تھے تو ہمارے جنرل نے حکم دیا کہ جو کوئی سپاہی لوٹ مار کرتا نظر آئے اسے گولی مار دی جائے. کچھ سپاہی ہنس رہے تھے کہ مون سٹون کہاں ہے، کس کے ہاتھ لگا. اسی دوران میں نے ایک چیخ کی آواز سنی. میں اس کمرے کی طرف بھاگا جہاں سے چیخ کی آواز آئی تھی. وہاں محل کے دو انڈین محافظوں کی لاشیں موجود تھیں جبکہ تیسرا انڈین سپاہی شدید زخمی حالت میں زمین پر گرنے ہی والا تھا. میرے کزن جان ہرن کیسل نے انہیں مار ڈالا تھا اس ہیرے کو حاصل کرنے کے لیے جو اب بھی خنجر کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں موجود تھا. زخمی سپاہی نے زمین پر گرتے ہوئے خنجر اور ہیرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ مون سٹون تم اور تمہارے ساتھیوں سے انتقام لے گا. یہ کہہ کر وہ زمین پر گرا اور مر گیا. मेरा कजन कमरे में अकेला था और नतीजा यही निकलता था कि उसने हीरा हासिल करने के लिए तीन आदमियों को कत्ल किया, मगर चूंकि मैंने उसे कत्ल करते हुए नहीं देखा था लिहाजा जुबान बंद रखी। उससे इस बारे में पूछा मगर उसने कुछ भी बताने या कहने से इनकार कर दिया। मैं फैसला आप पर छोड़ता हूं कि नतीजा निकालें कि मैंने अपने कजन से इस वाकये के बाद मिलना जुलना क्यों बंद कर दिया। हीरे के इंतकाम लेने की दास्तान सच है या झूठ, इससे कतअ नजर मेरा पुख्ता यकीन है कि अगर मेरे दोस्त ने जुर्म किया तो अपनी जिंदगी में ही उसे जुर्म का बदला जरूर मिलेगा, बल्कि अगर वो हीरा किसी और के पास जाएगा तो वो भी तकलीफ उठाएंगे। अब मैं आपको उस घर में ले जा रहा हूं जहां इस दिलचस्प कहानी के बेशतर वाकयात पेश आए। मिस्टर बैटरिज अब इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम गैब्रियल बैटरिज है। जब मैं कम उम्र था तो लेडी वरेंडर की हवेली में आया, यानी तकरीबन तमाम जिंदगी वहां ही गुजारी और तवील अरसे से घर की देखभाल और तमाम मामलात की निगरानी मेरे ही जिम्मे है। इस घर में कुछ ऐसे पुरिसरार वाकयात पेश आए जो नाकाबले यकीन हैं। फ्रैंकलिन ने मुझे कहा कि मैं इन तमाम वाकयात को कलम बंद करूं जो मूनस्टोन और उससे मुतालिका हैं। रॉबिन्सन क्रूसो नामी किताब मेरे नज़दीक दुनिया की बेहतरीन किताबों में से एक है। ऐसी किताब कहाँ दोबारा लिखी जा सकती है। उसने हमेशा मेरी मदद और रहनुमाई की। हर मुश्किल घड़ी में इस किताब ने मुझे रास्ता दिखाया और मैंने हमेशा फाल निकालने के लिए भी इसका सहारा लिया। कोई बात सोचकर किताब खोली तो किताब की तहरीर ने रास्ता दिखा दिया। अब जो ये कहा गया कि हीरे से मुतालिका बातें तहरीर करूं तो किताब का सहारा लिया और नतीजा निकाला कि यह जरूर करना चाहिए। जिस घर में मेरी रहाइश थी लेडी वरेंडर वहां की मालकन थी और उनकी खूबसूरत बेटी रैचल की सालगिरह नजदीक थी। फ्रैंकलिन जो रैचल का कजन था उसकी सालगिरह में शिरकत के लिए वहां आ रहा था। उसकी आमद के दिन तीन इंडियंस घर में आए। लगता था कि वो कुछ करतब और कमालात दिखाकर गुजर बसर करने वाले हैं। मैंने बहाना बना दिया कि घर में कोई ऐसा फर्द नहीं जिससे वो खुश कर सकें, मगर अजीब बात यह हुई कि घर के मुलाजमीन ने छुपकर उनकी बातें सुन ली। घर से बाहर वो खाली सड़क पर रुके, एक अंग्रेज कमजोर बच्चा सामान उठाए उनके साथ था। इस बच्चे के हाथ में कोई सियाह चीज डाली, फिर उससे सवाल करने शुरू किए, क्या वो अंग्रेज आदमी यहाँ आ रहा है। हाँ वो आ रहा है, मुझे आता दिखाई दे रहा है। क्या वो इस सड़क से आ रहा है, इस घर में आ रहा है। हाँ सड़क भी यही है और घर भी यही है। जिस शय की हमें तलाश है क्या वो भी उसके साथ है। हाँ वो चीज भी उसके साथ है। कुछ और सवाल पूछे मगर बच्चे ने कहा कि मेरा सर चकरा रहा है, आंखों के आगे अंधेरा है तो अब कुछ नजर नहीं आता। ये सुनकर वो सब वहां से चले गए। घर की देखभाल और तमाम हालात दुरुस्त रखने की मेरी जिम्मेदारी थी। फ्रैंकलिन मुझे बहुत अजीज था, अच्छी आदतों वाला। मैं समझ गया कि वो इंडियंस फ्रैंकलिन के आने के बारे में इल्म रखते थे और शायद उसके बारे में मालूम करने की कोशिश भी कर रहे थे, मगर आखिर क्यों। फिर मैं घर की एक मुलाजमा को तलाश करते हुए समंदर के किनारे पर चला गया। ये मुलाजमा जिसका नाम रोजाना स्पेयरमैन था चंद माह पहले ही इस घर में आई थी। अच्छी लड़की थी मगर बहुत कम बात करने और दूसरे मुलाजमों से दूर रहने वाली। खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि एक कंधा दूसरे से कदरे ऊंचा था जिससे वो अजीब दिखाई देती। लेडी वरेंडर ने उस पर तर्स खाया और घर में ले आई, मगर ये लड़की जब भी फारिग होती तो घर के करीब समंदर के उस हिस्से में चली जाती जो अपनी दलदल और वीरानी की वजह से बेहद खतरनाक, भयानक और उदास नजर आता। पानी वहां आता तो रेत के नीचे ही रहता और ऐसी आवाजें आती जैसे लोग रो रहे हों। जिस जगह कोई भी आना पसंद ना करता, ये लड़की अपना फारिग वक्त वहां गुजार कर न जाने क्या सोचती रहती और बाज़ औकात उसे वहां मैंने रोते हुए भी देखा। मैंने उसे कहा, बेटी घर चलो और खाना खाओ, लेकिन उसकी तो जैसे भूख उड़ चुकी थी। बोली, लगता है ये तलतल मुझे बुलाती है, शायद मैं एक दिन इसके अंदर चली जाऊं। मिस्टर फ्रैंकलिन मुझे तलाश करते वहां आ गए। रोजैना ने उन्हें देखा तो पहले हैरान परेशान देखती रही, फिर घबरा कर वहां से भाग गई। फ्रैंकलिन की जुबान इल्म हुआ कि उसका कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। उन्हें यह भी इल्म हो चुका था कि यहां भी तीन इंडियंस पुरिसरार बातें कर रहे थे। मिस्टर बैटरिज, सब कुछ ठीक नहीं है। वो लोग दरअसल उस हीरे की तलाश में लगते हैं जो मैं अपने साथ लाया हूं। मिस्टर हर्न कैसल फौत हो चुके हैं, मगर उन्होंने मेरे वाले साहब की ड्यूटी लगाई कि यह हीरा उनकी बहन लेडी वरेंडर के हवाले किया जाए, तो अपने वालिद के हुक्म से मैं ये यहां लाया हूं। ओहो, मैं बोला, ये हीरा तो मशहूर है, जहां जाता है बर्बादी लाता है। हाँ, याद आया, एक मर्तबा हर्न कैसल यहाँ आए थे, मगर लेडी वरेंडर ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। यकीनन उन्होंने बदला लेने के लिए अब ये उन्हें तोहफे में दे दिया होगा। इतना कीमती हीरा लेने से कौन इनकार करेगा? लालच में ले तो लेगा, मगर फिर परेशानियों में मुब्तला हो जाएगा। चूंकि हीरा मिस रेचल को बतौर तोहफा दिया गया था और सालगिरह के दिन उनके हवाले करना था, लिहाजा उसे बैंक में हिफाजत के लिए रखवाने का इंतजाम किया गया। अलबत्ता मैं और फ्रैंकलिन दोनों उन इंडियंस की पुरिसरार हरकत से परेशान और तशवीश में मुब्तला थे। आखिर वो कौन थे और क्या चाहते थे? फ्रैंकलिन और मिस रेचल ने एक दूसरे को पसंद किया और जल्द ही उनमें गहरी दोस्ती हो गई, जबकि रोजाना कुछ अजीबोगरीब हरकत कर रही थी। कभी बहुत परेशान दिखाई देती, कभी बेहद खुश। मिस्टर फ्रैंकलिन की तरह एक और नौजवान रिश्तेदार गॉडफ्रे एबल वाइट को भी सालगिरह में शिरकत की दावत दी गई। पहले महसूस होता था कि फ्रैंकलिन और रेचल शायद शादी कर लें, मगर गॉडफ्रे एबल वाइट भी अमीर नौजवान था और अब देखना था कि इनमें से किस को रेचल पसंद करती है। फ्रैंकलिन के बारे में रेचल कुछ मोहतात हो गई थी, क्योंकि फ्रैंकलिन से मिलने कुछ लोग आए और उससे रकम का मुतालबा किया जो उसने उधार ले रखी थी। अब ये बात साफ थी कि मिस्टर गॉडफ्रे बलवाइट बहुत अमीर है और फ्रैंकलिन उसके मुकाबले में कम अमीर। गॉडफ्रे अपनी दो बहनों के साथ वहां आया। मुझे कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि शायद उसने रेचल से शादी की बात की, मगर उसने इनकार कर दिया। लेडी वरेंडर को हीरे के बारे में इल्म हुआ तो सख्त नाराजगी का इजहार किया, मगर रेचल ने उसे बहुत ही पसंद किया और अपने कपड़ों पर इस तरह सी लिया जिससे वो नुमाया तौर पर नजर आता। सब उसकी जिसामत से हैरत ज़दा रह गई। काफी रात को सालगिरह की दावत खत्म हुई, सब मेहमान चले गए। रेचल ने कहा कि वो हीरा अपने कमरे में ही रखेगी। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने तमाम हवेली का चक्कर लगाया और हिफाजत का बंदोबस्त किया, फिर सब अपने अपने कमरों में सो गए। सुबह शोर से आंख खुली तो इल्म हुआ कि हीरा मिस रेचल के कमरे से गायब है। सब ने तलाश करने की कोशिश की, मगर वो वाकई चोरी हो चुका था। लेडी वरेंडर ने पुलिस को बुलाने का हुक्म दे दिया। लगता था कि वही इंडियंस अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। पुलिस के सुपरिटेंडेंट सिग्रेव आए, हर जगह का जायजा लिया, तमाम लोगों और मुलाजमीन से सवालों जवाब किए, मगर मिस रेचल कमरे में बंद बैठी थी और उसने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। माँ के कहने पर दरवाजा तो खोल दिया, मगर कहा कि हीरा गायब है और शायद अब कभी भी कोई भी उसे ना ढूंढ सकेगा। सुपरिटेंडेंट ने कोशिश तो बहुत की, मगर हीरा ना मिला। वो परेशान था कि क्या करे। लेडी वरेंडर अपने मुलाजमीन को महफूज रखना चाहती थी और वो समझता था कि हीरा उनमें से ही किसी के पास है। मिस्टर फ्रैंकलिन ने मुझसे कहा कि हीरा तलाश करना सुपरिटेंडेंट के बस की बात नहीं, किसी और आला सुराग रसा की खिदमात हासिल करनी चाहिए। वो हैरान था कि रोजैना स्पेयरमैन अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, मगर मुझे इल्म हो चुका था कि ये हरकतें दरअसल उसके इश्क की वजह हैं जो वो फ्रैंकलिन से कर रही है। पतले दुबले खस्ता हाल सर्जेंट कफ वहां पहुंच गए। वो सुराग रसा थे। जल्द ही उनकी नजरों में पेंट का एक धब्बा आ गया। ये रोगन दरअसल रेचल और फ्रैंकलिन ने शौकिया किया था, मगर फिर उसका धब्बा किसी चीज से टकरा कर दूसरे कमरे में मौजूद था। और अब सर्जेंट कफ का ख्याल था कि यहां से तहकीकात का आगाज किया जाए। पेंट कब किया गया, कब खुशक हुआ? कुत्ते या किसी जानवर के छूने से निशान पड़ सकता है? नहीं, यह मुमकिन नहीं। अब घर में मौजूद सब लोगों के कपड़े देखने हैं कि किसी के कपड़े पर रोगन पेंट का निशान है। बल्कि अगर कपड़े धुलने भेजे भी गए हैं तो वो भी देखे जाएं। सार्जेंट कफ अकलमंद आदमी था, पूछने लगा, ये लड़की रोजैना क्या किसी से मोहब्बत तो नहीं करती? इसलिए पूछ रहा हूं कि मैंने उसे छुपे बैठे हुए देखा। अगर किसी का इंतजार कर रही थी तो फिर ठीक है, वरना हीरे से इसका ताल्लुक हो सकता है। कुछ और बातें भी रोजाना के खिलाफ जा रही थी, खास तौर पर यह कि वो करीबी गांव में एक झोंपड़ी में जाती है जहां एक अपाहज लड़की उसकी सहेली है। सर्जेंट कफ का ख्याल था कि रोजाना ने ही हीरा चुराया है और उस झोंपड़ी में जाकर तहकीकात की। उसने पता चला लिया कि रोजाना नौकरी छोड़ने वाली है। घर पहुंचकर उसने रैचल के कमरे की तरफ देखा, फिर बुझे कहने लगा कि मिस रैचल यहां से जाने वाली हैं। ऐसा ही हुआ, लेडी वरेंडर ने बताया कि रैचल वहां से जाना चाहती है। सर्जेंट कफ से मैंने पूछा, तुम्हें कैसे इल्म हुआ? वो बोला, दरअसल हीरा चोरी नहीं हुआ, वो मिस रैचल के पास ही है। रोजाना इस बात को जानती थी, मैंने रोजाना पर शक किया, तो अब मिस रैचल क्या कर सकती हैं? वो सख्त परेशान है और यहां से जाना चाहती हैं। रोजाना को मैंने सख्त परेशानी में भागते देखा। फ्रैंकलिन ने बताया कि वो चुपचाप उसके कमरे में आ गई, उसने ज्यादा बात ना की तो रोते हुए भाग गई। मेरी बेटी पेनालोपी ने बताया कि रोजाना की हालत सख्त खराब है। उससे इल्म हो चुका था कि फ्रैंकलिन उससे मोहब्बत नहीं करता। मैं रोजाना से मिला तो उसने बात बनाने की कोशिश की, दिल का हाल छुपाने की भी कोशिश की, मगर मैं देख रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है। सर्जेंट कफ उन तीन इंडियन से मिलने जेल गए जो हीरे के इल्जाम में पकड़ लिए गए थे। ये मालूम हो चुका था कि वो हीरे की तलाश में थे, मगर हीरा उनके हाथ ना आया था। मिस रैचल बिलाखिर वहां से चली गई, और वो मुलाजमा रोजाना जिस पर सर्जेंट कफ शक कर रहा था, दलदली इलाके में गई और उसने वहां खुदकशी कर ली। मेरे नाम खत छोड़ा जिसमें मेरी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा किया गया था। अपनी जिस्मानी खामियों की वजह से वो अपनी मोहब्बत तो हासिल ना कर सकती थी, मगर इस दुनिया की तकलीफों से हमेशा हमेशा के लिए निजात हासिल कर चुकी थी। लेडी वरेंडर ने सर्जेंट कफ को बहुत बुरा भला कहा कि मासूम लड़की ने उसी की वजह से खुदकशी की, मगर फिर उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गई। वो बोला कि लेडी, आप बुरा ना मनाएं, मगर मुझे लगता है कि हीरा मिस रैचल के पास ही है। बाज़ औकात नौजवान साहबजादियाँ कुछ गलती कर बैठती हैं, फिर रकम की ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों अजीज़ों को देने पड़ ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है, अब वो यहाँ से गई हैं तो उनकी निगरानी की जा रही है, मगर ये बात रोजाना को भी मालूम है। आप मिस रैचल को अचानक उसकी मौत की इतला दें तो शायद उनके दिल पर चोट लगे और वो हीरे के बारे में बता दें। लेडी वरेंडर अपनी बेटी के पास गई, मगर रैचल ने कहा कि उसे हीरे या रोजाना के बारे में कुछ इल्म ना है और ना उसकी मौत से कोई ताल्लुक है। मगर सर्जेंट कफ अब भी इसरार कर रहा था कि बात खत्म नहीं हुई, रोजाना की मौत में अब भी पुरिसरार बातें मौजूद हैं। इंडियंस अब भी रैचल का पीछा करेंगे और हीरा जल्द ही मालूम हो जाएगा कि लंदन के अमीर ज्वेलर के पास गिरवी रखवा दिया गया है। सर्जेंट कफ ने कहा, ये तीन बातें अगर मैं चला भी गया तो आपको परेशान करती रहेंगी, तो बेहतर है आप मुझे काम करने दें। घर में एक मौत वाकई हो चुकी थी, रैचल की हालत भी अब खराब थी और वो सख्त परेशान थी, बल्कि घर का हर फर्द ही परेशान था। मैं समझ चुका था कि वो मनहूस हीरा अपना काम दिखाना शुरू कर चुका था, आगे ना जाने ये क्या बुराइयां लेकर आएगा। रोजाना की सहेली जो अपाहज थी मुझसे मिलने आई, फ्रैंकलिन को कातिल कहा और मुझे बताया कि रोजाना किस कदर अच्छी और मासूम लड़की थी। ये दोनों सहेलियां इस इलाके से लंदन जाकर सिलाई कढ़ाई करके जिंदगी बसर करने का इरादा रखती थी। मगर रोजाना को फ्रैंकलिन से मोहब्बत हो गई, जिसकी सख्त दिली से खुदकशी करने पर मजबूर हुई। ये अमीर होते ही कातिल हैं, खुदगर्ज लोग, वो बोली। एक अखबारी खबर पढ़ने को मिली जिसमें मशहूर ज्वेलर्स ने अदालत से मदद मांगी थी कि चंद दिनों से तीन इंडियंस उसके घर के करीब मशकूक हालत में नजर आ रहे हैं। अदालत ने पुलिस को कहा कि उस ज्वेलर के घर की हिफाजत का मुकम्मल बंदोबस्त किया जाए। यानी वाकई सार्जेंट कफ के कहने के मुताबिक हीरा उसके पास ही होगा, और अब इंडियंस उसके पीछे वहां तक पहुंच गए होंगे। एक और अजीब वाकया हुआ। गॉडफ्रे एबलवाइट को खत लिखकर एक घर में आने का कहा गया। वो वहां पहुंचे तो उन्हें पकड़कर बांधा गया और तलाशी ली गई। ये सब कुछ लगता था उन्हीं इंडियंस ने किया था। वो कमरा अंग्रेजों से किराए पर लिया गया था। चंद और लोगों को भी इसी तरह बुलाकर तलाशी ली गई और छोड़ दिया गया। यकीनन वो इंडियंस अब भी उस हीरे को तलाश कर रहे थे, और जिस पर भी शक होता हीरा हासिल करने के लिए उसके साथ ऐसा किया जाता। रेचल ने गॉडफ्रे को बुलवाया तो उसने बताया कि लोग कह रहे हैं कि मैंने हीरा चोरी किया और ज्वेलर के पास गिरवी रखवा दिया, जो उसने बैंक में हिफाजत के लिए रखवाया। ये बात सुनकर रेचल तो जैसे पागल हो गई। गॉडफ्रे, तुम बेगुनाह हो, मैं तुम्हारी इज्जत पर धब्बा नहीं लगने दूंगी। एक तरफ खुद मुझ पर हीरा चोरी करने का शक किया जा रहा है, अब तुम्हें इसका जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, जबकि मैं जानती हूं कि ये सब किसने किया। मैं अभी मजिस्ट्रेट के सामने जाकर सब कुछ बताऊंगी। आखिर जिद के आगे हार मानकर गॉडफ्रे ने यह तहरीर रैचल से ले ली कि वो मुकम्मल तौर पर बेगुनाह है और हीरे की चोरी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर गई, उसने तहरीर को जला दिया। गॉडफ्रे बोला कि वो नहीं चाहता कि इस मामले में रेचल का नाम शामिल हो। इस दौरान लेडी वरेंडर का दिल डूब रहा था, उन्होंने छुप कर दवाई पी। दरअसल उनको दिल की सख्त तकलीफ थी जो वो लोगों से छुपा रही थी, और अब मौत नजदीक देखकर वसीयत लिखना चाहती थी, जो उन्होंने वकील को बुलाकर लिख दी। लेडी वरेंडर रेचल और गॉडफ्रे की गुफ्तगु सुन रही थीं। उन दोनों को इल्म नहीं था कि लेडी वरेंडर तक उनके अल्फाज पहुंच रहे हैं। गॉडफ्रे ने एक मर्तबा फिर रेचल से इजहारे मोहब्बत करके शादी की ख्वाहिश जाहिर की। रेचल ने पहले बहुत मना किया, फिर हाँ कर दी। लेडी वरेंडर, जो पहले ही दिल की मरीज थी और ये शादी उनकी ख्वाहिश ना थी, ये बात बर्दाश्त ना कर सकीं और दिल का दौरा पड़ने से उसी वक्त दुनिया से रुखसत हो गईं। अब रेचल का सरपरस्त गॉडफ्रे का बाप था, मगर कुछ दिन बाद रेचल ने कोई बात सुनने के बाद इस शादी से इनकार कर दिया। गॉडफ्रे ने भी ये बात मंजूर कर ली। दरअसल लेडी वरेंडर के वकील को इल्म हो चुका था कि गॉडफ्रे पहले ही उनकी वसीयत को हासिल करना चाहता है। फिर एक इंडियन वकील के पास आकर मालूमात हासिल करता रहा कि अगर गिरवी चीज रखी जाए तो कितने अरसे के लिए मुआहदा होता है। उसने बता दिया कि एक साल, मगर फिर इल्म हो गया कि दरअसल वो बैंक से हीरा निकलने की मुद्दत पूछ रहा था। जैसे ही बैंक से वो हीरा बाहर आएगा, ये इंडियंस फिर उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। मेरी ये बातें रेचल को बताने पर उसने शादी करने पर एक बार फिर नजरेसानी की और गॉडफ्रे से शादी करने से इनकार कर दिया। उधर फ्रैंकलिन, जो रेचल से सच्ची मोहब्बत करता था, उसके लिए परेशान था। पहले रेचल ने उससे मुंह मोड़ा, फिर गॉडफ्रे से भी शादी करने से इनकार कर दिया। फ्रैंकलिन सोच रहा था कि ये सब कुछ हीरे की मनहूसियत के जेरे असर हो रहा है। रेचल के दिमाग पर हीरे ने असर डाला है। रेचल ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। वो दोबारा बैटरियल कैब्रिज से मिला। अब बाकी की बातें उसी की जुबानी सुने। मैं बैटरियल कैब्रिज से मिला तो उसने रोजैना और उसकी माजूर सहेली के बारे में बताया जो खत लाई थी। हम दोनों उसके पास पहुंच गए। उसने पहले हमें खूब सुनाया, फिर खत फ्रैंकलिन के हवाले कर दिया। उसमें कहा गया था कि समंदर में एक डब्बा मौजूद है, रास्ता दर्ज किया गया था। वहां पहुंचे, बक्सा निकाला, उसमें से जो चीज निकली वो नाकाबले बयान थी। मेरी रात को पहनने की कमीज, मगर उस पर उस पेंट का धब्बा मौजूद था जिसका सर्जेंट कफ बार बार जिक्र करता था, और इसी चीज की उसे तलाश भी थी। मेरा दिमाग काम करने से इनकार कर चुका था। रोजैना क्या कहना चाहती थी? क्या वो ये कहना चाहती थी कि मैं हीरे का चोर हूं और उसने अपनी जिंदगी देकर मुझे बचा लिया था? ये सब क्या है? मेरे दिमाग में तूफान मचा हुआ था। कभी दिल चाहता हंसूं और कभी ये कि जोर जोर से रोऊं। मैंने हीरा नहीं चुराया था और इस कमीज में लगा धब्बा साफ कह रहा था कि मैं ही चोर हूं। बैटरी ने मुझे दिलासा दिया और याद दिलाया कि कमीज के साथ जो खत है उसे पढ़ना चाहिए। खत में उसने लिखा था कि वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती है। ये उसे मंजूर नहीं कि उसकी मोहब्बत तकलीफ में हो। पहली मर्तबा जब उसने मुझे देखा तो मोहब्बत की शुरुआत उसी वक्त शुरू हुई। ये दलदली इलाका था और उसने तहिया कर लिया कि अगर मोहब्बत नहीं मिलेगी तो इसी जगह अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेगी। मोहब्बत से जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। हर वक्त एक ही ख्याल, एक ही तसव्वुर, आंसू, दुख, तकलीफ। जब ये देखा कि सोने की कमीज पर वो धब्बा है तो सोचा कि तमाम शक आप पर ही जाएगा, इसलिए कमीज को समंदर में छुपा दिया। सिर्फ आप ही उस तक पहुंच सकेंगे। ये तहरीर पढ़कर दो परेशानियां जहन में पैदा हुई। एक, क्या वाकई मैंने ही हीरा चुराया? अगर चुराया तो मुझे खुद इसकी खबर क्यों ना हुई? दूसरी, वो बेचारी लड़की जिसने मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर जान दे दी। बैटरी ने मुझे दोबारा तसल्ली दी और हमने वकील से मिलने का फैसला किया। ये बात समझ से बालातर थी कि अगर हीरा मैंने चुराया भी तो वो लंदन में बैंक तक कैसे पहुंच गया? वकील ने तमाम बातें सुनकर कहा कि कोई शख्स हीरा चुरा कर आपको फंसाने की खातिर धब्बा कमीज पर लगा सकता है। वकील ने मशवरा दिया कि मुझे रेचल से मिलना चाहिए और कहा कि दूसरे दिन वो रेचल को अपने घर बुलाएगा जहां मैं उससे मुलाकात कर सकता हूँ। दूसरे दिन मैंने रेचल से मुलाकात की। शुरू में वो खुश नजर आई मगर फौरन बाद गुस्से में मुझे बुरा भला कहने लगी। मैं समझने से कासिर था कि वो किस बात पर गुस्सा कर रही है। मैंने उसके सामने कमीज और रोजैना का खत रख दिया। वो बोली, तुमने फ्रॉड का ये नया तरीका ढूंढा है। तुम ही तो वो शख्स हो जिसने हीरा चुराया था। एक धमाके की तरह ये अल्फाज मेरे कान से टकराए। कमीज पर धब्बे का निशान और रेचल के मुताबिक उसने खुद मुझे हीरा ले जाते हुए देखा था। मैंने गुस्से और शर्मिंदगी पर काबू पाते हुए कहा, यकीनन आपको कोई गलतफहमी पैदा हुई है। रेचल रोने लगी। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब तुम उस रात को कमरे में आए, दरवाजा खोला, हीरा निकाला और उसे लेकर चले गए, मैं ये सब कुछ देख रही थी। मैं उस वक्त जाग रही थी। वो शख्स जिससे मैं मोहब्बत करती थी, वो ही मेरे कमरे से हीरा चोरी कर रहा था। फिर दूसरे दिन वही शख्स, यानी तुमने हीरा तलाश करने में सबसे ज्यादा सरगर्मी दिखाने का भी मुजाहरा किया। फिर उसकी चोरी का इल्जाम मेरे अपने ऊपर लगाया गया। ये मेरी ही हिम्मत थी कि फ्रैंकलिन, तुम्हें हीरा चुराते देखूं और बर्दाश्त करूं। वो रो रही थी और उसके आंसू देखकर मैं भी रोने वाला था। वो इतने अरसे बुझे चोर समझती रही और दिल में सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैं फैसला कर चुका था कि अब मामले की तह तक पहुंचकर ही रहूंगा। बाद में वकील की जुबानी इल्म हुआ कि मुझे देखकर रेचल सख्त डिप्रेशन में मुब्तला हो चुकी है और जहनी सुकून बर्बाद हो चुका है। वकील ने कहा, हीरे की गुमशुदगी को 1 साल पूरा होने वाला है। अब उसे बैंक से निकलवाया जाएगा तो हम मालूम कर सकते हैं कि उससे कौन हासिल करने की कोशिश करेगा। मैंने सुराग रसा सार्जेंट कफ से भी मुलाकात करने की कोशिश की मगर वो मुल्क से बाहर थे। बैटरीज के डॉक्टर से मिलने गया। वो तो बेहद कमजोर थे मगर उनके असिस्टेंट मिस्टर जैनिंग्स ने तमाम बातें सुनकर कहा कि आप रात को अच्छी नींद के लिए कोई नशा तो नहीं लेते? मैंने इनकार कर दिया मगर ये बता दिया कि मैंने सिगरेट नोशी उन दिनों खत्म की हुई थी जिससे रातों को परेशान रहता था। मगर हीरा गुम होने की रात शानदार नींद आई। ओहो, मिस्टर जेनिंग्स बोले, मैं समझ गया। आपकी और डॉक्टर साहब की तकरार हुई थी कि अगर दवाई में नशा हो तो फिर भी उसका असर ना होगा, तो फिर उन्होंने आपको परेशान देखकर सुकून देने वाला नशा आपको पिला दिया। आप रात को हीरे की फिक्र में सोए थे, नींद गहरी थी, मगर नशे की हालत में भी गैर इरादी तौर पर हीरे को मिस रेचल के कमरे से उठा लाए। ये बात साबित भी की जा सकती है। अगर आप दोबारा वही हालात पैदा कर दें तो नतायज भी वैसे ही निकल सकते हैं। दोबारा सिगरेट नोशी छोड़ दें, हीरे के बारे में फिक्र करें, जहनी सुकून के लिए रात को नशे का इस्तेमाल करें, तो फिर हीरे की फिक्र करते हुए कमरे में जाकर हीरा उठा सकते हैं। अगरचे आप सो रहे होंगे मगर सोते में ये काम दोबारा करेंगे। हालात बहुत बदल चुके थे, मिस्टर गॉडफ्रे बैरून मुल्क जा चुका था, लेडी वरेंडर दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, और मेरी मोहब्बत रेचल मुझसे नाराज थी और मुझे चोर समझती थी। मगर जैनिंग्स ने कहा कि वो अक्लमंद लड़की हैं, तो इस तजर्बे में ज़रूर आपका साथ देंगी। मगर वो भी हैरान था कि अगर हीरा मैंने चुराया तो वो बैंक तक कैसे पहुंच गया। तजर्बे की मिस रेचल ने इजाज़त दे दी, उन्होंने वहां आने का इरादा भी जाहिर किया, सर्जेंट कफ भी आ चुके थे, उन्होंने भी वहां आने पर आमादगी जाहिर की। मिस रेचल की ख्वाहिश थी कि तजर्बा कामयाब हो, क्योंकि अभी भी फ्रैंकलिन की मोहब्बत उसके दिल में मौजूद थी। सुकून देने के लिए नशे की दवाई दोबारा दी गई। रात के वक्त वाकई उसने असर किया और फ्रैंकलिन अपने आप से बातें करने लगा। हीरा चोरी हो सकता है, इंडियंस उसे चुरा सकते हैं। फिर फ्रैंकलिन उठा, कमरे से बाहर निकला, रेचल के कमरे में गया और शीशे का जाली हीरा निकाला। उसे लेकर वापस अपने कमरे में जाने की कोशिश की, मगर हीरा उसके हाथ से गिरा। फ्रैंकलिन नजदीकी सोफे में लेटकर सो गया। नशे का असर गहरा था, चुनाचे वो गहरी नींद उस कमरे में सोता रहा। रेचल को यकीन हो चुका था कि असल चोर फ्रैंकलिन नहीं, क्योंकि वो तो ख्वाब की हालत में हीरा लेकर गया था। वो अपनी गलती पर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, मगर असल बात हम मालूम ना कर सके थे कि हीरा फ्रैंकलिन ने कहाँ छुपाया। अब सिर्फ एक रास्ता था कि मालूम किया जाए बैंक से हीरा निकलवा कर किसको दिया जाता है। हम बैंक पहुंचे, हीरा निकलवाया गया, मगर ये मालूम ना हो सका कि जोहरी कहाँ गया। हाँ, एक लड़का जो हमारे साथ था वो भी गायब था, शायद वो उनका पीछा कर रहा हो। सर्जेंट कफ भी आ गए, तमाम बातें सुनी और कहा कि अगरचे पहले कुछ गलती हुई थी मगर अब यकीन है कि चोर कौन है। उन्होंने एक नाम लिखकर कागज मुझे दे दिया कि जब मुजरिम का यकीन हो तो ये खोलूं, इसमें मुजरिम का नाम मौजूद है। लड़का भी वहां आ गया और बताया कि बैंक से जिस शख्स ने हीरा लिया था उसका पीछा करते हुए वो बहरी जहाज तक गया, मगर जहाज ने दूसरे दिन सफर करना था तो वो होटल में गया। इस दौरान कुछ लोग उसकी निगरानी करते रहे और भेष बदल कर उसके कमरे में जाने की कोशिश भी करते रहे। ये बातें सुनकर हम सब फौरन उस होटल में गए। मालिक ने परेशानी की हालत में बताया कि उस मुसाफिर ने कहा था कि सुबह जल्दी जगा दिया जाए, मगर अब दरवाज़ा नहीं खोल रहा, दरवाज़ा तोड़ दिया गया, उस शख्स को कत्ल कर दिया गया था, तकिए से मुंह दबाकर सांस रोक कर मार दिया गया था। नज़दीक ही वो डब्बा था जो बैंक से निकलवा कर लाया गया था, मगर वो खाली था और हीरा गायब था। सर्जेंट कफ सुराग रसा ने मुझे कहा कि इस शख्स ने भेस बदला हुआ है। मैंने कागज़ पर मुजरिम का नाम लिख दिया था कि आपके पास है, वो मेरी जेब में था, मैंने निकाला और पढ़ा, गॉडफ्रे एबल वाइट। उस शख्स का मास्क उतारा गया तो वहां गॉडफ्रे एबल वाइट की लाश मौजूद थी। सर्जेंट कफ ने बताया कि इंडियंस बिलाखिर कामयाब हो ही गए कि हीरा हासिल कर लें। दरअसल गॉडफ्रे के अखराजात बहुत ज्यादा थे और आमदनी कम, तो उसने सोचा कि मिस रेचल से शादी करके जायदाद हासिल कर ली जाए। वो बहुत से लोगों का मकरूज भी था। सालगिरह की रात को वो यही बैठकर सोच रहा था कि कर्ज किस तरह उतारे, तो कुछ आहट सुनकर बाहर गया। देखा कि फ्रैंकलिन रेचल के कमरे में गया, उसने देखा कि रेचल जाग रही है, हीरा फ्रैंकलिन ने वहां से लिया और बाहर आ गया। باہر گاڈفری نظر آیا تو اسے ہیرا پکڑا دیا اور کہا کہ اس کی حفاظت کی جائے اور بینک حفاظت کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اس نے یہ سب کچھ نیند کی حالت میں کیا۔ صبح گاڈفری کو معلوم ہو گیا کہ فرینکلن نے یہ سب کچھ نیند کی حالت میں کیا ہے تو ذہن میں ترکیب آ گئی کہ یہ ہیرا گروی رکھ کر رقم حاصل کر کے لوگوں کے قرض اتارے جائیں۔ جوہری کو گروی رکھوا دیا جس نے بینک میں رکھوایا۔ کہیں سے رقم ملی تو جوہری کو وہ دے کر ہیرا دوبارہ حاصل کر لیا، مگر انڈینز بھی اس کے پیچھے تھے جنہوں نے بالآخر گاڈفری کو قتل کر کے اپنا ہیرا حاصل کر لیا اور اب بحری جہاز میں بامبے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ بامبے پولیس کو اس کی اطلاع دی جا چکی ہے۔ کچھ عرصے بعد جہاز کے کپتان نے سرجنٹ کف کو خط لکھ کر بتایا کہ تین انڈینز اس کے جہاز میں سوار تھے۔ ایک روز جب وہ منزل مقصود بامبے کے قریب تھے تو ایک کشتی چرا کر یہ تینوں انڈینز جہاز سے فرار ہو گئے۔ بندرگاہ پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جہاز سے کیوں فرار ہوئے، مگر ان کا اب تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں ہیں۔ جو لوگ ریچل کی اس سالگرہ میں شریک تھے جس میں اس نے ہیرا پہنا ہوا تھا، ان میں ایک انگریز دوست بھی شامل تھا جو اب انڈیا میں موجود تھا۔ اس نے وکیل کو خط لکھا اور بتایا کہ مجھے مون سٹون کے چوری ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ میں انڈیا کے دور دراز کے علاقوں میں سفر کرنے کا شوقین ہوں، اور آج کل جہاں ہوں وہ بہت دور دراز کا علاقہ ہے جہاں بہت کم یورپین آتے ہیں۔ یہاں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ یہاں کے لوگ بہت کم پڑھے لکھے ہیں اور مذہب کے معاملے میں اتنے حساس ہیں کہ قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یہاں دو مندر واقع ہیں، سومناتھ بھی یہاں سے قریب ہے۔ میں نے وہاں جانے کا ارادہ کیا، 3 دن کے سفر کے بعد وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ جب میں وہاں جا رہا تھا تو بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی وہاں جاتے ہوئے دیکھا، یہ تعداد جلد ہی ہزاروں میں تبدیل ہو گئی۔ سب سومناتھ جا رہے تھے، یہاں بہت بڑی مذہبی تقریب ہو رہی تھی گاڈ مون کی شان میں۔ وہاں سب لوگ سفید لباس میں موجود تھے، رات چاندنی میں نہائی ہوئی تھی، مذہبی موسیقی بج رہی تھی، 3 ہندو نمایاں تھے۔ درمیان والا وہی شخص تھا جس سے میں نے لیڈی ورینڈر کے گھر میں بات کی تھی جب میں انگلینڈ میں تھا۔ بتایا گیا کہ یہ براہمن ہیں جو اب تمام زندگی مختلف راستوں میں سفر کریں گے اور اپنی زندگی مذہب کے لیے وقف کر دیں گے، مگر وہاں گاڈ آف دا مون چاند دیوتا کا مجسمہ بھی موجود تھا جس کے 4 ہاتھ آسمان کی طرف چاروں سمت میں اٹھے ہوئے تھے۔ مگر یہ کیا اس کے ماتھے پر وہی مون سٹون لگا ہوا تھا جو مجھے مس ریچل کی سالگرہ کے دن ان کے لباس میں نظر آیا تھا؟ ہاں، 800 سال بعد یہ اسی جگہ دوبارہ پہنچ گیا جہاں سے غائب ہوا تھا۔ کیسے وہاں پہنچا، انڈین نے کیسے حاصل کیا، آپ ہی بتا سکتے ہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ مون سٹون بائی ولکی کالنز، تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com